ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान नाम के बारे में। तो भगवान भगवत गीता में वर्णन करते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। तो भगवत गीता में कृष्णा ये वचन देते हैं। तो कृष्णा बोलने में बहुत चतुर हैं। भगवान सांदीपनि मुनि के वहां 64 कलाओं में निपुण हुए, अलग अलग गुणों में वो एक्सपर्ट बने, उसमें से एक भी था वाक चातुर्य। कि भगवान निपुण हैं, बोलने में दक्ष हैं। तो ऐसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ये अमूल्य उपदेश प्रदान करते हैं। और ये 9वें अध्याय में कृष्णा वचन देते हुए सारे भक्तों को ये बताते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्या चिंतयन्तो माम, कैसे मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से। उसी बात को फिर से भगवान दोहराते हैं गीता के 8वें अध्याय में। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तो भगवान इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं, किस बात पर, अनन्य भावना से मेरा भजन करने पर। क्योंकि भगवान किसी के वश में हो जाते हैं तो एक ही है, अपने भक्ति के वश में हो जाते हैं या भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान को हमेशा भक्तों के साथ प्रॉब्लम है। हमें भी किसके साथ समस्याएं रहती है, डिवोटिस के साथ, नॉन डिवोटिस से इतना हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कृष्ण को भी प्रॉब्लम किससे है, अपने भक्तों से। क्यों प्रॉब्लम है, मैं कल पढ़ रहा था। तो भगवान कहते हैं, ये जो ब्रज की वधुएं हैं या गोपिकाएं हैं, वो इतना अधिक मुझसे प्रेम करती हैं कि मैं उनको उसके बदले में कुछ रिपे नहीं कर सकता। इतना अधिक उनकी तीव्र सेवा की भावना है कि मैं क्या नहीं कर सकता, फिर से उनके उसके बदले में कुछ दे नहीं सकता। मैं हमेशा हमेशा के लिए उनका ऋणी हो गया हूं। तो कृष्ण को परचेज करने का या कृष्ण को अपना बनाने के लिए भगवान गीता में इस बात पर जोर देते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य भावना से जो मेरा नित्य स्मरण करता है, तस्याहं सुलभ पार्थ, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, मैं उस व्यक्ति के लिए क्या हूं, सदैव सुलभ हूं। तो भगवान एक जगह तो कहते बहुत सुलभ हो, और वहां भक्ति के लक्षणों का वर्णन में क्या आता है, भक्ति सुदुर्लभा है। तो लेकिन वो सुलभ हो सकती है जब हम भक्तों की सहायता से या भक्त की शरणागत होकर कृष्ण भक्ति को स्वीकारते हैं। तो भगवान सुलभ तब है जब हम क्या करेंगे, उनका नित्य स्मरण करेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सुबह सुबह हम वो पढ़ते हैं, 10 नामापराध पढ़ते हैं, उसमें हमेशा जब जोर आता है। एक डिवोटी थे दिल्ली टेम्पल में, जब ये 10 नामापराध पढ़ा जाते थे तो उसमें आता है ना, वैष्णवों की निंदा करना। जब ये उसमें क्या है, पहले वो एक सेंटेंस हो चुका है कि होने वाले 10 नामापराध, लेकिन यहाँ सीधा सीधा कोई पढ़ता है तो जैसे वो आता है कि जिन भक्तों ने अपने जीवन को समर्पित कर लिया है, ऐसे भक्तों की निंदा, वो जैसे करना आता है वो जोर से बोलता है करना। जितने भी 10 है उसके आखिरी का जो शब्द है वो आएगा, तो वो डिवोटी मेरे साथ बैठा रहता था, मुझे देख के जोर से कहेगा। तो मतलब वो कहता था कि ये 10 नामापराध हमें याद दिलाए जा रहे हैं कि ये आपको करने हैं। तो वही हमारी स्थिति है। तो बल्कि उसमें आखिरी में हम पढ़ते हैं, जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कुछ कुछ चीजें हैं, कई साल बीतते हैं तो भी समझ में नहीं आता। तो ये कृष्ण प्रेम है क्या वस्तु, है कि नहीं, जिसके लिए हम लगे पड़े हैं और रोज चिल्ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पहले तो प्रेम को हम समझे, फिर बाद में किसको समझे, कृष्ण को। काम प्रेम, जिसकी तुलना चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने की है, और फिर बाद में हम समझे कि हाँ कृष्ण का जो प्रेम है वो कितना सर्वोच्च है और कितना परम शुद्धमय है। तो कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है, कृष्ण प्रेम यही है। आचार्य कहते हैं कि ये कृष्ण प्रेम नाम की वस्तु हम सबके हृदय में नित्य रूप से विद्यमान है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्त कराये उदय। तो ये नित्य हमारे हृदय में निवास कर रहा है कृष्ण प्रेम, लेकिन हमें उसको उदित कराना है, जगाना है। कोई सो रहा है, जैसे मंगल आरती में हम सब सोते हैं, तो मैं जगाने नहीं जाता हूँ, क्या करता हूँ, कीर्तन ऑन कर देता हूँ, तो फिर धीरे धीरे डिवोटीज हमारे उठते हैं। तो वैसे ही ये उदित करने के लिए एक ही उपाय है, और वो क्या उपाय है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। श्रवण हमारे इयररिंग्स हैं, कानों में डालते ना स्त्रियां, कुंडल डालती हैं। तो असली कुंडल क्या है, श्रवणम, कृष्ण के बारे में सुनना। तो वहां कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण आदि करने से चित्त में कृष्ण प्रेम उदित होता है। कृष्ण प्रेम मतलब एक भक्त के हृदय में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को ग्लोरीफाई करने की दिव्य भावना जागृत हो जाती है। उसका हृदय एक क्षण के लिए नहीं रहता, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करने के लिए वो रुकता नहीं है, और निरंतर कृष्ण का गुणगान उसकी जिह्वा में चलता रहता है, और वो वास्तव में कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम का मतलब है अप्रिशिएट करना, ग्लोरीफाई करना। अभी हमारी समस्या क्या है, हम अपने प्रेम में पागल हैं, भौतिक प्रेम में मग्न हैं, हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपना गुणगान चाहते हैं, अपना ग्लोरिफिकेशन चाहते हैं, अपना अप्रिशिएशन चाहते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम वास्तव में वो है जो एक डिवोटी के हृदय में कृष्ण के इन चार चीजों के लिए दिव्य भावना जागृत होती है, जिसके द्वारा वो निरंतर कृष्ण का गुणगान करते रहता है, और वो श्रवण कीर्तन कभी उसका रुकता नहीं है। और इसी चीज को भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। मेरे भक्त का प्राण क्या है, अभी हम सबका प्राण किसी ना किसी में अटका हुआ है कि नहीं। अपने यदि हम सोचे गंभीरता से, मेरा प्राण किस में अटका है, किसी का प्राण किसी मोबाइल में अटका हुआ है, किसी का प्राण फेसबुक में है, किसी का प्राण व्हाट्सएप में है, किसी का प्राण और किसी चीज में है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कहते हैं मच्छिता मदगत प्राणा, मेरा मेरे भक्तों का प्राण कौन है? मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में इस चीज की चर्चा करते हैं और इस चीज की जो प्रमुख शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। तो ये जो कृष्ण प्रेम है वो यही वस्तु है कि कृष्ण का निरंतर हमारे जीवा के द्वारा गुणगान होता रहे, और ये तभी संभव है जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं। तो भक्तों का संग हमारे लिए लंगर के समान है, लंगर में जाते हैं ना, निरंतर प्रसाद बढ़ता रहता है, तो वैसे ही होना चाहिए। भक्तों का संग ऐसा अवेलेबल होना चाहिए लंगर की तरह, जहाँ निरंतर उसका लाभ उठाते जाएं, उसको प्राप्त करते रहें। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैंने ये जो आंदोलन बनाया है, इस आंदोलन का एक में उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है कि जो कृष्ण की भावना से भावित होना चाहते हैं, हम अलग अलग भावना से भावित हैं, तो जो व्यक्ति कृष्ण की भावना से भावित होना चाहता है उन लोगों के लिए मैंने क्या बनाया है, ये आंदोलन बनाया है। इस आंदोलन की शरण ग्रहण करने से कोई भी व्यक्ति सरलता से कृष्ण की भावना से भावित हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ये सिखाते हैं कि कृष्ण का निरंतर स्मरण करने का सरलतम उपाय यही है कि निरंतर हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करें। जैसे प्रभुपाद मुंबई में थे, तो एक समय में जब मुंबई मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो बहुत सारे संगमरवर के पत्थर मंगाए गए थे, तो सारे लोग तोड़ने में लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति था मुस्लिम, जो पत्थर को तोड़ते जा रहा था और अल्लाह का नाम उच्चारण कर रहा था। प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद ने कहा ये डिवोटी है। डिवोटी मीन्स जो निरंतर क्या करे, कृष्ण के नामों का उच्चारण करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद इस पर जोर देते थे कि कृष्ण का निरंतर स्मरण करने का सर्वोत्तम उपाय है कि कृष्ण के नामों का आश्रय ग्रहण करना। तो प्रभुपाद ने कई स्थानों में भगवान नाम की जो महिमा है वो वर्णित की है, और इवन श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन शुरू किया है वो केवल नाम के बल पर, ये जो कृष्ण नाम है उसके बल पर ही इस आंदोलन की प्रभुपाद ने शुरुआत की थी। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि एक भक्त को बहुत ही विनम्रता से भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और भगवान के जो पवित्र नाम है उसको पुकारना चाहिए। कैसे पुकारना चाहिए? जैसे द्रौपदी ने पुकारा था। द्रौपदी का वर्णन आता है महाभारत में, जहां द्रौपदी बहुत बड़े कठिन संकट में थे, और उस समय द्रौपदी के पास कोई और उपाय नहीं था। तो द्रौपदी, उसके सामने उसके 5 पति हैं, बड़े बड़े उनके जो भी सीनियर्स हैं, लेकिन द्रौपदी के ऊपर ये जो घटना बीत रहे थे, तो उस समय द्रौपदी ने किसी और का स्मरण नहीं किया, किसी और को पुकारा नहीं। द्रौपदी ने केवल जो द्वारकाधीश कृष्ण है उनको पुकारा। भगवान कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे द्वारकाधीश के रूप में, और रुक्मिणी के महल में बैठे थे। कई जगह पुराणों में वर्णन आता है कि चेस खेल रहे थे, कई जगह वर्णन आता है कि रुक्मिणी उनको प्रसाद या भोगा सर्व कर रहे थे और भगवान ग्रहण ही करने वाले थे। उसी समय द्रौपदी की जो पुकार है वो भगवान ने सुनी। तो भगवान एक प्रकार से दौड़ने लगते हैं, तुरंत ही सारी चीजों को रोक के भगवान भागते हैं। तो रुक्मिणी कहती है, कृष्णा आप गरुड़ के ऊपर जाइए बैठकर, या फिर नो आपका रथ लेके जाइए दारू को लेकर। कहते नहीं नहीं, मुझे उन दोनों के ऊपर भी भरोसा नहीं है, वो मुझे सही समय में पहुंचाएंगे या नहीं। तो रुक्मिणी कहती कि क्या ऐसी चीज है द्रौपदी में जिसकी पुकार से आप तीव्र गति से भाग रहे हो द्वारका को छोड़कर। तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने आंखों के आंसुओं से एक रोड बनाया है, और जिसके कारण मैं बाध्य हो गया हूँ सारे चीजों को त्याग कर द्रौपदी की ओर भागने के लिए, उसको बचाने के लिए। और भगवान द्रौपदी की रक्षा करते हैं, उनको साड़ी प्रोवाइड करके। तो उसी प्रकार से माया रूपी दुशासन हमें भी नग्न करते जा रहा है हर रोज, लेकिन हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की पुकार की भावना नहीं है कृष्ण के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अमूल्य हरिनाम आकर भी हम उसको उसके सही मूल्य को नहीं जानते। प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवान नाम की जो महिमा है उससे हम सबको अवगत होना चाहिए, और गंभीरता से ये जो भगवान का पवित्र नाम है उसका आश्रय ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम के द्वारा ही जीवन में सारी मंगलता का समावेश निश्चित है। अपना जीवन मंगल या धन्य करने के लिए हम कई प्रकार की चीजों का आश्रय ग्रहण करते हैं, कई प्रकार की चीजें, कई प्रकार के टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन जो परम भगवान का ये जो पवित्र नाम है उसको हम हमेशा प्रायोरिटी ना देकर, प्राथमिकता ना देकर हमेशा दूसरा दर्जा देते हैं और बाकी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए एक भक्त का जीवन का मतलब है कृष्ण की स्मृति, और एक भक्त के जीवन में मृत्यु क्या है? कृष्ण की विस्मृति होना। इसलिए जिस भावना से हम भगवान नाम लेते हैं उस भावना से भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, कि जिस भावना से आप मेरी शरण ग्रहण करोगे उतनी ही मात्रा में मैं आपसे आदान प्रदान करूंगा। तो हम 16 माला जप करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि टाइम में प्रसाद मिले। जीवन भर जप करते रहे 16 माला, केवल एक ही चीज मिलेगी आपको, क्या मिलेगा? टाइम प्रसाद मिलेगा। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। तो हमारी जो जप करने की भावना है वो इसलिए है कि मुझे जप फिनिश करना है, या फिर कई चीजें उसके बाद मुझे मिले। जैसे कई मंदिर में है कि आप मंगल आरती नहीं आओगे तो आपको प्रसाद नहीं। मंगल आरती क्यों जाना है? प्रसाद मिलेगा। मतलब पूरा जीवन भर मंगल आरती करेंगे तो किस लिए? प्रसाद मिलेगा। कई जगहों में आपको चैंटिंग, जैसे एक टेम्पल में मैं गया था तो वहां कंपलसरी है कि 7:15 तक आपकी माला होनी चाहिए, नहीं तो आपको केवल खिचड़ी प्रसाद मिलेगा। तो क्यों कर रहा है जब? क्योंकि खिचड़ी प्रसाद खानी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि 7:15 तक जब खत्म करो तो अच्छा प्रसाद मुझे मिलेगा। हाँ, जैसे श्रीनिवास आचार्य ने राजा वीर हमीर को विष्णुपुर में डिवोटी बनाया, तो उस राजा ने विष्णुपुर में क्या किया था कि वही व्यक्ति मेरे राज्य में रह सकता है जो 64 राउंड्स एवरीडे करे, नहीं करे तो उस व्यक्ति को राज्य से बाहर खदेड़ के निकाला जाएगा। तो लोग जैसे तैसे 64 राउंड्स कर रहे थे, क्यों? राज्य में रहना है। भावना क्या है कि राज्य में निवास करना है। 64 राउंड करूंगा नहीं तो फिर मुझे राज्य में निवास करना नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे भी सेम स्थिति है। हम जब भी इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कोई पूछने वाला है, मेरी मालाएं खत्म करनी है, इसी कारण से हम जब कर रहे हैं। जब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण को, कृष्ण की मेरे जीवन में परम आवश्यकता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे कि कृष्ण को उस प्रकार से पुकारना चाहिए जैसे एक बालक, वही चीज प्रभुपाद ने कही कि एक बालक अपनी माँ को पुकारता है। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने नियम बनाया था, वो अपने घर में रहा करते थे, गृहस्थ जीवन में थे, तो उस समय रोज शाम को भक्ति विनोद ठाकुर रात्रि के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, आप स्वानंद सुखन कुंज उनके घर में जाते हैं तो वहां उनका एक जपा रूम है, बहुत ही छोटा जपा रूम है। शुरुआत के दिनों में इतना बड़ा डोर था उसका, अभी तो रेनोवेशन में इतना छोटा कर दिया है। तो एक छोटा सा जपा रूम है जिसमें अकेला व्यक्ति बैठ सकता है और सामने अल्टर के लिए स्पेस है आज भी। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने सारी सेवाएं करके रात के 12 से लेकर 4 बजे तक इतना लाउडली भी और एक प्रकार से क्रंदनमय हरि नाम का उच्चारण करते थे। तो पड़ोसी लोग भी कहा करते थे कि ऐसी आवाज आती थी हमें पूरी रात कि कोई व्यक्ति रो रहा है। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे लगता था कि ऊपर कोई कुटिया हिल रही है, कोई घर हिल रहा है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर अपना हरि नाम का उच्चारण किया करते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि नाम को और बेटर करना है तो वे एक तीन स्टेप बताते हैं हरि नाम को और गंभीरता से लेने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि सबसे पहले चीज जो हरि नाम को ग्रहण करना चाहता है, हरि नाम को फलीभूत करना चाहता है, उसे सबसे पहले ये चीज अनुभव करनी चाहिए या जाननी चाहिए कम से कम फिलोसॉफिकली भी कि भगवान का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वही चीज रूप गोस्वामी ने कही अभिन्नत्वं नाम नामिनः कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम ही स्वयं कृष्ण है। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की सबसे पहले मीटिंग कृष्ण के साथ किसी रूप में होती है तो वो उनका पवित्र नाम है। फर्स्ट मीटिंग हमारी कृष्ण के साथ किसी रूप में होती है तो उनके नाम के रूप में होती है। यदि हम इस चीज को सही रूप से जानेंगे तो फिर जपा में सोएंगे नहीं। हमें इससे हमें अवगत नहीं है। इसके कारण क्या होता है, हमें बहुत सारी समस्याएं जपा के समय आती हैं और हम जपा के समय सो जाते हैं। ये जप माला इतनी हल्की होती है लेकिन जैसे जप करने बैठो तो उसका वेट बढ़ने लगता है और लगता है कि बहुत हेवी हो गई है। और फिर धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रिया शिथिल हो जाती है एक्सटेसी के कारण नहीं। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक भक्त को शास्त्रों के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से इस ज्ञान से गंभीरता से अवगत होना चाहिए कि कृष्ण और कृष्ण का जो नाम है वो अभिन्न है। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस भगवान नाम को अपने साथ लेके आते हैं। एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, वो गीत में कहते कि अरे जीव जागो कि ये जो औषधि चैतन्य महाप्रभु अपने साथ लेके आए हैं और ये औषधि का उपाय कार्य क्या है, माया का विनाश करने के लिए है। ये परम औषधि भगवान श्री चैतन्य अपने साथ लाए हैं और भगवत धाम जाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। अब क्यों नहीं इसको गंभीरता से स्वीकार करते हैं? क्योंकि हम भगवान के नाम की जो महिमा है या नाम तत्व के जो ज्ञान है उससे अवगत नहीं है। इसलिए भगवान का जो नाम है जो चैतन्य महाप्रभु ने लाया और चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण इतने अधिक दयालु हैं कि उन्होंने उन नाम में सारी शक्तियां डाल दी हैं। इसलिए शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि हनुमान हमेशा घूमा करते थे और वो सोचते थे कि कौन नाम का उच्चारण कर रहा है। जहां जहां नाम संकीर्तन हो रहा हो हनुमान जी वहां दौड़ दौड़ के जाया करते थे नाम संकीर्तन सुनने के लिए। तो एक व्यक्ति बाथरूम में बैठकर हरि नाम का उच्चारण कर रहा था तो हनुमान जी पहुंच उनको लगा ये क्या कर रहा है यहाँ ऐसे स्थान में। तो हनुमान जी ने उनको बहुत पिटाई की। उनकी पिटाई करके हनुमान ने सोचा मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है, अभी मैं अयोध्या जाता हूँ। किन से मिलने? भगवान राम से मिलने। तो हनुमान जी अयोध्या पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम के रूम के महल या रूम के बाहर जब हनुमान जी पहुंचे तो पहले ही वहां जो निवासी थे उनको बताया गया था कि सबको अंदर आने के लिए अलाउ करो लेकिन हनुमान जी को अलाउ मत करो। तो भगवान राम वहां बेड पर लेटे हुए बहुत दुखी थे और एक प्रकार से भगवान श्री राम अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। तो हनुमान जी को सोचा कि मेरी आवश्यकता है सेवा करने के लिए। तो हनुमान जी फोर्सफुली दरवाजा खोलकर जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हुए कहते कि मैं क्या सेवा करूं, आपके दुख का कारण बताइए। हनुमान जी को राम कहते हैं कि मेरे दुख का कारण कौन है, तुम हो। क्योंकि तुम भूल गए मेरे नाम की जो महिमा है जिसके कारण तुमने क्या किया, उस व्यक्ति की पिटाई की है और ये भूल गए हैं कि मेरा जो नाम है और मैं उसमें कोई अंतर नहीं है, मैं और मेरे नाम एक ही वस्तु है। तो भगवान श्री राम हनुमान को बहुत विस्तार से अपने जो राम नाम की महिमा है उसकी व्याख्या करते हैं और हनुमान जी उसी नाम महिमा को सारे संसार में प्रकट करते हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। इसलिए भगवान नाम हमारा एक अमूल्य धन हमें बनाना चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर को किसी ने पूछा कि आप बताइए हरि नाम के प्रति कैसे और अधिक टेस्ट हम जागृत कर सकते हैं, हरि नाम के प्रति कैसे अनुराग उत्पन्न किया जा सकता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर भक्तिविनोद वाणी वैभव में कहते हैं कि केवल वैष्णव की सेवा करके और जिन भक्तों का हरि नाम में अनुराग है उन भक्तों की सेवा करके हम हरि नाम के प्रति अनुराग विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर पहली स्टेप बताते हैं हरि नाम में उन्नति करने की, कि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, इसकी इससे अवगत होना एक भक्त के लिए परम आवश्यक है। तो दूसरी चीज भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सदैव एक नाम जप करने वाले भक्त को भगवान नाम उच्चारण करने की भिक्षा मांगनी चाहिए कृष्ण से। सदैव एक भिखारी के भांति उसे कृष्ण से भिक्षा मांगनी चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा हरि नाम महामंत्र लो तुमी मांगी। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम को लेकर आए हैं लेकिन फिर भी आप क्या करो, आप मांगो कृष्ण से कि हरि नाम मुझे प्रदान कीजिए। करुणा कुरुमय करुणा भरिते। तो श्रीमती राधिका बहुत अधिक दयालु है, वो भी सारे जगत को हरि नाम प्रदान करती है। तो नाम जप करने के लिए हमें एक भिखारी बनना होगा। कई बार कोई कह सकता है कि हम तो यहाँ प्रभु बनने के लिए आए हैं, मास्टर बनने के लिए आए हैं, हम भिखारी बनने नहीं आए। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति भिखारी की भावना को धारण नहीं करेगा तब तक उसके जीवा से कृष्ण नाम निरंतर उच्चारण नहीं हो सकता, निरंतर कृष्ण नाम उसकी जीवा पर नाच नहीं सकता। इसलिए चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त को एक बेगर की भांति कृष्ण से याचना करनी चाहिए भगवान नाम उच्चारण करने के लिए, क्योंकि जब हम भीख मांगेंगे तभी हमें वो मिलेगी। अभी हमें कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है कि रियली मुझे शुद्ध कृष्ण नाम चाहिए। हम यदि देखे अपने हृदय को झांक कर कभी ये विचार आता है हमारे हृदय में कि रियली मुझे कृष्ण का शुद्ध नाम उच्चारण करना है, रियली मुझे कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहिए, रेयरली कोई एक थॉट कभी हमारे हृदय में जागृत होता है। अन्यथा हम नाम के लिए भगवत भजन या नाम भजन कर रहे हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि एक भिखारी की भांति एक व्यक्ति को भगवान नाम जप करने की जो भिक्षा है वो कृष्ण से मांगनी चाहिए, याचना करनी चाहिए। कभी कभी 10-15 साल हो जाते हैं हम जप करते रहते लेकिन कुछ प्रभावी महसूस नहीं होता, लगता है कि गलत मंत्र तो जप तो नहीं कर रहा हूँ, कोई और मंत्र तो नहीं इस युग के लिए। इस प्रकार से हमें गंभीरता के साथ भगवान के जो नाम जप करने के लिए कृष्ण से सदैव याचना करनी चाहिए, कृष्ण से सदैव भीख मांगनी चाहिए। और जब इस भिखारी की भावना को हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो वास्तविक रूप से फिर कृष्ण अपनी अनुकंपा करते हैं और हम फिर सरलता से कृष्ण नाम का जो उच्चारण है वो कर पाते हैं या कृष्ण नाम हमारे लिए सरल हो जाता है। ये भीख की भावना कौन से व्यक्ति के अंदर आ सकती है, जो व्यक्ति विनम्र है, जिसके अंदर नम्रता का भाव है वही व्यक्ति याचना कर सकता है किसी के पास। जिसके पास अहंकार घमंड गर्व और अपने अचीवमेंट्स का अहंकार है वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण से याचना नहीं कर सकता। इसलिए कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री येद मान मद कुमार। वो कहते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुतम जो नॉलेज है और सुंदरता, ये चार चीजें जिनके पास है वो व्यक्ति अत्यधिक घमंडित हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के हृदय में विनम्रता कभी आ नहीं सकती या विनम्रता प्रवेश नहीं कर सकती। तो फिर उनके लिए बहुत कठिन है याचक बनना, उनके अंदर सदैव दाता का भाव है, देने का भाव, कभी रिसीव करने का जो एटीट्यूड है वो स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ये परम आवश्यक है एक भिखारी की भावना जब हम अपने हृदय में धारण करेंगे तभी वास्तव में कृष्ण का ये जो नाम हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा कृष्ण नाम हमारे लिए बहुत बहुत अधिक दूर है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुता जुता करो ना करह यही बार। वो कहते कि हे नंद सुत कृष्ण आप मेरे ऊपर करुणा करिए, तुमा बिना के अच्छे आमार, कि आपके बिना मेरे लिए कौन है, आप मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत धकलिए, केवल आप ही एक में मेरे आश्रय हैं। इस प्रकार की करुणा की भिक्षा की भावना हमारे आचार्यों ने व्यक्त की है, और तभी वास्तव में उनके उदाहरण से हम देखते हैं उसी कारण से वो सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण कर पाए या कृष्ण नाम दूसरों को भी दे पाए, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या है, कृष्ण नाम लेना या हरि नाम लेना और हरि नाम को बांटना, ये दो ही चीजें हैं। हरि नाम को ग्रहण करना, हरि नाम को स्वयं उच्चारण करना और हरि नाम दूसरों को प्रदान करना, यही एकमात्र देखा जाए तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये हम सबकी नीड है। और उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक लवले चाहिए, लालसा चाहिए, ग्रेड चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा हरि नाम या भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई और दूसरा मूल्य नहीं है, एक ही मूल्य है कि हम कितने ईगर हैं कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम या कृष्ण नाम प्राप्त करने के लिए, कितनी हमारे अंदर लालसा है। इसलिए वो कहते हैं मूल्य में कलम तत्र लौल्यपि, वो कहते हैं कि एक ही मूल्य है, वो है तीव्र लालसा कृष्ण प्राप्ति की या कृष्ण प्रेम प्राप्ति की। और ये लोलुपता जब हमारे अंदर होगी तभी सरल रूप से हम जो कृष्ण का नाम है वो कर सकते हैं या उच्चारण कर सकते हैं। इसी कारण से भक्तिनो ठाकुर कहते एक स्थान में कि कोई कहे कि मैं तो हरि नाम कर रहा हूं लेकिन हरि नाम तो मेरा अपराधों से निरंतर भरा हुआ है, निरंतर हरि नाम अपराधों के रहित होकर मेरे लिए करना असंभव है, दिन रात हरि नाम ये नाम अपराधों से ग्रसित रहता हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते एक ही चीज करोगे तो ये अपराधों से रहित हो सकते हो। बहुत तीव्रता से अपने हृदय को डालकर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को प्रार्थना करो, उनके प्रति की गई जो प्रार्थना है वो हरि नाम के प्रति रुचि देने में सामर्थ्यवान है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि एक नाम भजन करने वाले साधक को निरंतर गौर और नित्यानंद के प्रति अपने हृदय को डालते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मान, हे मेरे मन कब तुम नाचोगे, दयाल श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के नामों का उच्चारण करते हुए, उनकी महिमा को सुनते हुए, उस महिमा का उच्चारण करते हुए कब तुम नाचने लगोगे। इसी कारण से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति ये नाम भिक्षा मांगेगा वो देने के लिए तैयार है। चैतन्य महाप्रभु तो जो मांग रहा है उसको दे रहे हैं, बल्कि नित्यानंद प्रभु जो मांग भी नहीं रहा है उनसे दूर भाग रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और उसको पकड़ पकड़ के कह रहे हैं तुम क्या करो, हरि नाम को स्वीकार करो, हरि नाम को ग्रहण करो। इसलिए तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु घर घर जाते हैं और हरि नाम प्रदान करते हैं। तो हरि नाम ग्रहण करने से क्या होगा, इस भक्तिनो ठाकुर कहते शेषे राधा कृष्ण पाइबे दर्शन, तो अंत समय में भगवान राधा और कृष्ण का उस व्यक्ति को स्मरण हो सकता है। इसलिए शास्त्र हमें सदैव प्रेरित करते हैं, सदैव इंस्पायर्ड करते हैं कि ये जो कृष्ण का मधुर नाम है जिसको गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए, और इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्यवान है कि हर एक व्यक्ति चाहे कितना ही वो अधम पापी कितना ही नीच क्यों ना हो उसका उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं। और भगवान के भक्त भी इस हरि नाम को बांटने के लिए जनक महाराज के एटीट्यूड को अपने हृदय में धारण करते हैं। एक बार ये 12 महाजनों की सभा होने वाली थी, फिर मीटिंग अरेंज की थी उन्होंने यमलोक में यमराज के वहां, तो जनक महाराज को भी इनवाइट किया उसमें। तो जनक महाराज जब जा रहे थे तो जाते जाते वो यम लोगों से गुजरे जहां सारे जीवों को कष्ट दिया जा रहा था, नरक यातनाएं जिनको दी जा रही थी। तो जैसे जनक महाराज उस एरिया में पहुंचे तो सारी चीजें बदलने लगी, जिनको तप्त लोहे के इसमें डाला जा रहा था वो ठंडा हो गया था, या फिर कई सारे जो कष्ट दिए जा रहे थे सारे लोग अपने आप ही उन कष्टों से मुक्त हो रहे थे केवल जनक महाराज की उपस्थिति के कारण। क्योंकि जनक महाराज निरंतर भगवत नाम का उच्चारण कर रहे थे और भगवत नाम का उच्चारण करते हुए जा रहे थे, जिनके द्वारा उच्चारित भगवत नाम को सुनकर जो पापी तापी जो नरक में गिरे हुए जो जीव हैं वो भी सारे कष्टों से मुक्त हो रहे थे केवल श्रवण करने मात्र से, और जनक महाराज जैसे महान भागवत वैष्णव का दर्शन करने मात्र से। तो जनक महाराज को सबने प्रार्थना की कि आप यहाँ ही रहो, ताकि आपके रहने मात्र से क्या हो रहा है, हमारे सारे जो कष्ट हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक सारे खत्म हो रहे हैं। तो जनक महाराज को ये उचित लगा। तो जनक महाराज को यमराज जी बुला रहे थे कि अभी लेट हो रहे हैं मीटिंग में, आप आइए। तो जनक महाराज ने कहा नहीं, मेरे कारण दूसरों को यदि लाभ हो रहा है तो मैं कहां निवास करने के लिए तत्पर हो, नरक में भी निवास करने के लिए तैयार हो। यदि आप इन सबको मुक्त करोगे तो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार हूं। तो फिर यमराज ने सबको मुक्त किया ऐसे शास्त्र कहते हैं, और फिर जनक महाराज उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। वही भाव हम श्रील प्रभुपाद में भी देखते हैं। प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जाते हैं, जो हिप्पीज हैं वो वास्तव में नरक यातना भोग रहे हैं वहां, उस स्थान में जाकर भी प्रभुपाद रहते हैं और हरि नाम प्रदान करके उनको उनका जो जीवन है सुखमय बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कृष्ण का ये जो नाम सारे दुखों का दुखों की परम औषधि है, और इस नाम को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, एक भिखारी की भांति कृष्ण से याचना करनी चाहिए कि आप हमें ये नाम प्रदान करो, हे कृष्णा मैं आपके पवित्र नामों का उच्चारण कर पाऊंगा, अन्यथा मेरे लिए मेरी एक एक माला करना भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ को लांगने से भी खड़तर है, बहुत कठोर है। और तीसरी चीज वो कहते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि उस भावना से पुकारना चाहिए जो भावना चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी भावना सिखाई है, अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकजम। तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये भावना सिखाई है, इस भावना से हम हरि नाम का उच्चारण करें, ये गंभीरता से समझे कि हे नंद तनुज कृष्ण मैं वास्तव में इस भौतिक जगत में गिर गया हूं और मुझे आपकी परम आवश्यकता है। अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, भवाम्बुदो मीन्स भवसागर, इस भवसागर में हे कृष्ण में गिर गया हूं और मुझे क्या करो, आप इस पतित अवस्था से बाहर निकालो और आपके चरण कमलों में स्थान प्रदान करो। तो इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर ये तीन स्टेप्स बताते हैं हरि नाम का गंभीरता से उच्चारण करने के लिए। पहली चीज तो उन्होंने कही कि हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए ये जानकर कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, और दूसरी चीज उन्होंने कही कि भगवान का ये जो नाम हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमें भगवान से भीख मांगनी चाहिए हरि नाम उच्चारण करने के लिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी चीज भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि उस भावना को जागृत करें जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा स्तकम में हमें सिखाई है, अय नंद तनुज किंकरम, कि हे नंद तनुज कृष्ण मैं इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, आप मुझे क्या करो, इस भव सागर से उतारो, उभारो या बाहर निकालो। तो शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने बचपन से ही कृष्ण नाम उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चित्रहते, कि अभ्यास करेंगे कृष्ण नाम का उच्चारण करने का निरंतर, तो ये वैसे हो जाएगा जैसे कोई बच्चे शुरुआत में जब टाइपिंग सीखते हैं तो हर चीज वो देखनी पड़ती है, लेकिन बाद में जब टाइपिंग करने के लिए कहो तो आंखें बंद करके क्या करता है, टाइपिंग करते रहता है। तो वैसे ही हरि नाम है, हरि नाम का उच्चारण अभ्यास करेंगे भक्तों के संग में शास्त्र के मार्गदर्शन आदि में, तो हरि नाम हमारे लिए उस टाइपिंग की भांति हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हमारा मन कृष्ण के नाम में फोकस्ड हो सकता है। इसलिए भगवद गीता के उन श्लोकों में कृष्ण कहते हैं अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वो योगी युक्त है मुझसे जो क्या करता है अनन्य चेता अनन्य भावना से निरंतर मेरा स्मरण करता है और भगवान फिर उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाते हैं। तो हमारे लिए भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण सुलभ है, लेकिन हम इस सुलभ प्रोसेस को कपटता को अपने हृदय से हटाकर यदि ग्रहण करते हैं तो हरि नाम लेना हमारे लिए सरल हो जाता है। हृदय हमारा कपटता से भरा पड़ा है, अनर्थों से भरा है, इसलिए हरि नाम का उच्चारण करना भी हमारे लिए कठोर या कठिन हो रहा है। तो इसी कारण से भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुलभ हूं मैं, लेकिन कब, जब आप निरंतर मेरा स्मरण करोगे। स्मरण करने का सर्वोत्तम उपाय श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया है और वो सर्वोत्तम उपाय यही है कि कृष्ण के ये जो पवित्र नाम है उनका उच्चारण करें अनन्य चेता सततम। और दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं ये जना परियुपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भावना से जो मेरे चिंतन करता है, अनन्य भावना से जो मेरा भजन करता है, योग योग मीन्स भगवान कहते हैं कि मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। और क्षेम योग क्षेम मीन्स उसके जो आवश्यकता है उसके पास जो है, योग मीन्स उसकी रक्षा करता हूँ और क्षेम मीन्स जो उसकी आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। इस प्रकार का वचन कृष्ण देते हैं। यही चीज द्रौपदी के जीवन में देखते हैं। द्रौपदी के जीवन में जब भी कष्ट आता है तो सबसे पहले उसकी पुकार, वो किसी को पुकारती है तो वो कृष्ण है। फर्स्ट किसी को पुकार लगाती है तो वो कृष्ण को है। तो जब दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजा भी था काम्य वन में, जब ये लोग निवास कर रहे थे वनवास में, तो वहां दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ जाते हैं और पांडव वहां उनका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। अभी इतने सारे अतिथि आए हैं घर में तो उनके लिए प्रसाद भी तो चाहिए। तो तब वो कहते हैं कि आप क्या करो, स्नान आदि करके आ जाओ, फिर आकर भोजन करो। तो फिर उस समय देखा कि घर में तो कुछ है ही नहीं और जो अक्षय पात्र था द्रौपदी ने तो पहले ग्रहण कर लिया था और वो एक बार ग्रहण करे तो फिर उससे कुछ और निकलता नहीं था। तो फिर उसने कृष्ण को पुकारा। जैसे कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण दौड़ते हुए आते। अभी द्वारका और काम्यवन वृंदावन कितना दूर है, कृष्ण अपने नाम को तुरंत श्रवण करते हैं और उस स्थान में पहुंचते हैं। इसलिए वो नारद को कहते हैं कि जहां मेरे नाम संकीर्तन या मेरे गुणों का गान होता है वहां मैं निवास करता हूं या वहां आकर मैं बैठ जाता हूं। तो भगवान तुरंत आते हैं और आते ही द्रौपदी को कहते कि द्रौपदी कुछ खाने के लिए है मेरे लिए। द्रौपदी कहते इसलिए तो आपको बुलाया है। कृष्ण ने कहा प्रसाद है क्या, वो कहते इसलिए तो बुलाया है, प्रसाद नहीं है इसलिए बुलाया है। प्रसाद होता है तो हम किसी को बुलाते नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है हमें। तो वैसे ही जैसे कृष्ण को पुकारती है कृष्ण आते हैं और देखते हैं कृष्ण एक ही चीज जो भी शाक का छोटा सा पार्ट था उसको ग्रहण करते हैं तो सबकी संतुष्टि हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है। द्रौपदी को कई बार श्री प्रभुपाद ने कई तात्पर्य में कोट किया है और कहा है कि द्रौपदी भगवान नाम के प्रति बहुत अधिक आसक्त थे और भगवान कृष्ण के नाम के प्रति उसका गहरा लगाव या फेद था। तो उसी भांति हमें भी भगवान के जो पवित्र नाम है उसको अपना परम धन बनाना चाहिए। नाम सम वस्तु नाय ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। भक्तिनोद ठाकुर कहते कि नाम सम वस्तु नाय ए भव संसारे। इस भौतिक संसार में कई वस्तुओं को हम इकट्ठा करते हैं, अपने पास सदैव रखना चाहते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अरे नाम के समान कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। और इवन कृष्ण के भंडार, कृष्ण के ट्रेजर हाउस में भी नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तो जो कृष्ण के पास सर्वोच्च वस्तु है वही सर्वोच्च वस्तु कृष्ण ने अभी बाहर कर दी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्वोच्च सबसे प्रिय वस्तु हम छुप के रखते हैं या बहुत अपने क्लोज वाले लोगों को दिखाते हैं बीच बीच में, नहीं। तो वैसे ही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो अपने ट्रेजर हाउस को खोलते हैं, तोड़ते हैं, और वो अपने नजदीक के लोगों को ही नहीं दिखाते, सीमित नहीं रखते, बॉर्डर फेंस बनाकर नहीं रखते। वो क्या करते, सारे बॉर्डर्स को सबको तोड़ देते हैं और सबके लिए है ये परम जो औषधि है, परम नाम सबके लिए अवेलेबल कराते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत अधिक दयालु हैं और उनकी दया यही है कि ये कृष्ण नाम रूपी धन सबको बांट रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद रो पड़े जब प्रभुपाद ने पहली बार गौर निताय की स्थापना की एक टेम्पल में, और स्थापना करते अल्टर में सामने लेक्चर देने के लिए बैठे हैं तो प्रभुपाद वो गीत गाने लगे, हाँ, परम करुणा बहु द्विजन। जैसे ये शब्द उच्चारण किए प्रभुपाद ने परम करुणा बहु द्विजन, तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभुपाद ने सोचा कि इनसे अधिक दयालु कौन हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से अधिक दयालु इस संसार में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के परम अनुयायी हैं या सेनापति हैं, जिन्होंने क्या क्या ले गए वो अपने साथ, कृष्ण का परम नाम। प्रभुपाद जब मुंबई में थे तो एक व्यक्ति के घर में प्रसाद के लिए गए शाम के समय में, तो बहुत सारे प्रश्न वो पूछ रहा था। तो प्रभुपाद को कहा कि स्वामी जी, जब तक आप हो तब तक आपके शिष्य बड़े नाचते कूदते रहते हैं, सब जो आप कहो वो करते हैं, लेकिन आपके चले जाने के बाद क्या होगा, इनसे होगा ये सब चीजें, ये सब लोग फिर से अपने वो सारी जो बुरी आदतें हैं उनको करेंगे और इस भारत आदि इस संस्कृति को छोड़ के चले जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, जब तक ये लोग ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे तब तक वो कभी भी पतित नहीं होंगे। जैसे ही हरि नाम का जप करना वो छोड़ देंगे, कम करेंगे, तो वो पुनः पतित हो जाएंगे। प्रभुपाद एक बार शुरुआत के दिनों में न्यूयॉर्क में जब आंदोलन शुरू किया तो वहां से उनको सैन फ्रांसिस्को जाना था, तो सब भक्तों का बहुत लगाव प्रभुपाद से हो गया था। ब्रह्मानंद लीडर थे उस समय, बीटीजी प्रिंट करते थे और गर्ग मुनि आदि, तो जब पहली बार जाना था तो इनको इतनी आदत हो गई थी प्रभुपाद के सहचार्य संघ की कि उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी आप जा रहे हो तो हमें तो यहाँ मुश्किल होगा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है आप जब जाते हो। तो प्रभुपाद ने कहा, हम हमेशा एक साथ बने रहेंगे, कब, जब आप यहाँ रहकर भी क्या करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे संबंध को बनाए रखेगा, हरे कृष्ण महामंत्र ही हमसे दूरी कम करेगा और हमेशा हम एक दूसरे के सहचार्य में या संगति में बने रहेंगे। तो प्रभुपाद की ये प्रमुख शिक्षा थी कि उनके अनुयायी गंभीरता से इस हरे नाम का उच्चारण करें और दूसरों को भी इसका वितरण करें। डिवोटीज कहते हैं अलग अलग अवतार का अलग अलग सपना होता है, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का सपना क्या है, मेरा सपना सबका जपना। चैतन्य महाप्रभु एक सपना देखा करते थे, हम भी बहुत सारे सपने देखते हैं, रोज कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं, लेकिन महाप्रभु का सपना क्या है, मेरा सपना सबका जपना। महाप्रभु हर जीव को देखना चाहते थे हरि नाम का उच्चारण करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये सर्वोत्तम देन है और जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए दूसरों को वितरण करने के लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद के हरिनाम संकीर्तन के निताय गौर प्रेमानंदे।